ओम शांति। आज प्यारे प्यारे बाबा ने हम बच्चों को बहुत ही राजयुक्त बात बताई है। बाबा ने कहा कि जितना पढ़ाई पर ध्यान देंगे उतना ही ऊंच पद पाएंगे। दूसरी बात बाबा ने कही कि बच्चों को इस समय अपना कखपन देकर के 21 जन्मों के लिए बादशाही लेनी है। फिर साथ साथ बाबा ने कहा कि बच्चों को अपनी चेकिंग भी करनी है। माया पछाड़ेगी लेकिन डरना नहीं है, इसलिए अपनी चेकिंग भी साथ साथ करते रहें। बाबा ने कहा ये तुम्हारी बहुत बड़ी ईश्वरीय फैमिली है। भक्ति में गाते ना, तुम माता पिता हम बालक तेरे, वहाँ गाते रहते हैं लेकिन ईश्वरीय फैमिली का अनुभव नहीं होता है। लेकिन बाबा ने कहा यहाँ पर तुम बच्चों को ईश्वरीय फैमिली का अनुभव होता है। और साथ साथ आप जानते हैं कि जून का महीना प्यारी मातेश्वरी जी का महीना है और मातेश्वरी जी के भी महावाक्य हैं, वह भी हम सुनेंगे। आज की तारीख है 8 जून 2026 और मूल्य का मुख्य हेडिंग मीठे बच्चे। ये सारी विश्व ईश्वरीय फैमिली है। मीठे बच्चे, ये सारा विश्व ईश्वरीय फैमिली है, इसलिए गाते हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे। तुम अभी प्रैक्टिकल में गॉडली फैमिली के बने हो, वो तो गाते रहते हैं लेकिन बाबा कहते तुम अभी प्रैक्टिकल में ईश्वरीय फैमिली अथवा गॉडली फैमिली के बने हो। मीठे बच्चे, ये सारा विश्व ईश्वरीय फैमिली है, इसलिए गाते हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे। तुम अभी प्रैक्टिकल में गॉडली फैमिली के बने हो। आज का प्रश्न है, बाप से 21 जन्मों का पूरा वर्षा लेने के लिए सहज विधि कौन सी है। बाप से 21 जन्मों का पूरा वर्षा लेने के लिए सहज विधि कौन सी है। इसका उत्तर है संगम पर शिव बाबा को अपना वारिस बनाओ। जिन्होंने शिव बाबा को अपना वारिस बनाया हाथ खड़ा करो। बाबा कहते संगम युग पर शिव बाबा को अपना वारिस बनाओ। तन मन धन से बलिहार जाओ तो 21 जन्मों के लिए पूरा वर्षा प्राप्त होगा। बाबा कहे कि जो बच्चे संगम पर अपना पुराना सब कुछ इंश्योर करते। बाबा देखो कितनी अच्छी बात करे, कोई बड़ी चीज नहीं, मनुष्य के पास है ही क्या, कखपन है, करना क्या इंश्योर पुरानी चीज को। बाबा कहे जो बच्चे संगम पर अपना पुराना सब कुछ इंश्योर करते हैं, मैं उन्हें रिटर्न में 21 जन्मों तक देता हूँ। आज का गीत है नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु पग पग ठोकर खाओ। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, ये भगत भगवान को पुकारते हैं। भगवान को पूरा न जानने के कारण मनुष्य कितने दुखी हैं। भक्ति मार्ग में कितना माथा मार पुकारते रहे, चिल्लाते रहे कि हमको नैनहीन है, हमको रास्ता दिखाओ। अब बाबा रास्ता दिखा रहे तो सुनते नहीं है। तो बाबा कहते हैं भक्ति मार्ग में कितना माथा मारते रहते हैं, सिर्फ इस जीवन की बात नहीं है। जब से भक्ति मार्ग शुरू होता है तब से धक्के खाते रहते हैं। भारत में ही इन देवी देवताओं का राज्य था जिसको स्वर्ग सचखंड कहा जाता था। भारत सचखंड पहले भी था, अभी भी है, चाहे वो भूल गए लेकिन भारत सचखंड है। भारत की महिमा बड़ी जबरदस्त है। क्यों क्यों जबरदस्त है? क्योंकि परमपिता परमात्मा की कर्तव्य भूमि जन्म भूमि है, क्योंकि भारत परमपिता परमात्मा का बर्थ प्लेस है। भारत की महिमा क्यों है जबरदस्त? क्योंकि भारत परमपिता परमात्मा का बर्थ प्लेस है। उनका असल नाम शिव है, शिव जयंती भी मनाते हैं, रुद्र व सोम जयंती नहीं कहा जाता, रुद्र जयंती या सोमनाथ जयंती नहीं कहा जाता, शिव जयंती मनाते हैं, रुद्र व सोम जयंती नहीं कहा जाता है, शिव जयंती व शिवरात्रि कहा जाता है। स्वर्ग की स्थापना करने वाला एक ही हेवनली गॉड फादर है। अब सभी भक्तों का भगवान तो जरूर एक होना चाहिए। सब भगवान को पुकारते ना, तो बाबा कहते सभी भक्तों का भगवान तो एक होना चाहिए। सभी नैनहीन है, नैनहीन मीन्स ज्ञान नहीं है, अर्थात ज्ञान की चक्षु व डिवाइन इनसाइट नहीं है। भगवान वाच्य मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ। श्रीमद् भागवत गीता है मुख्य, जो बाबा ने सिखाया वो बाद में श्रीमद् भागवत गीता में डाला है, इसलिए बाबा को बार बार कहना पड़ता है श्रीमद् भागवत गीता है मुख्य। श्री अर्थात श्रेष्ठ मत, अब तुमको बुद्धिवान बनाया जाता। एक तो बाबा दिव्य चक्षु देते हैं, दूसरा बाबा बच्चों को बुद्धिवान बनाते हैं। अब तुमको बुद्धिवान बनाया जाता है। दिव्य चक्षु अर्थात ज्ञान का तीसरा नेत्र दिखाते, देवताओं को दिखाते ना तीसरा नेत्र, वो तीसरा नेत्र है ज्ञान का, ज्ञान का अथवा तीसरा नेत्र दिखाते। वास्तव में ज्ञान का तीसरा नेत्र किसको मिलता है कौन बताएगा? बाबा कहते ज्ञान का तीसरा नेत्र तुम ब्राह्मणों को मिलता है, देवताओं को नहीं मिलता है, मिलता है ब्राह्मणों को, लेकिन उसका फल मिलता है सतयुग में। वास्तव में ज्ञान का तीसरा नेत्र तुम ब्राह्मणों को मिलता है, जिससे तुम बाप को और बाप के और बाप की रचना के आदि मध्य अंत को जान जाते हो। ज्ञान के तीसरे नेत्र से तुम बाप को और बाप की रचना के आदि मध्य अंत को जान जाते हो। इस समय सभी में देह अभिमान व पांच विकार हैं, इसलिए घोर अंधेरे में हैं। आगे तुम भी सब अज्ञान में थे, बाबा बच्चों को बता रहे हैं, याद करा रहे हैं कि पहले तुम भी सब अज्ञान में थे। बाबा कहते हैं आगे तुम भी सब अज्ञान में थे, तुम बच्चों के पास रोशनी है, तुम्हारी आत्मा सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को अब जान गई है। आगे तुम भी तो अज्ञान में थे, ज्ञान अंजन सतगुरु दिया अज्ञान अंधेर विनाश, भक्ति में गाते ना, ज्ञान अंजन सतगुरु ने दिया अज्ञान अंधेर विनाश। जो पूजे थे वही फिर पुजारी बन गए हैं, पूजी है रोशनी में और पुजारी है अंधियारे में। परमात्मा को आपे ही पूजे आपे ही पुजारी कह नहीं सकते, भक्ति में तो कहेंगे ना परमात्मा आपे ही पूजे आपे ही पुजारी, बाबा कहते उसको नहीं कह सकते, वो किसके लिए? तुम बच्चों के लिए, तुम ही पूजे थे और तुम ही पुजारी बने हो। परमात्मा को आपे ही पूजे आपे ही पुजारी कह नहीं सकेंगे, वह तो है ही परम पूज्य, सबको पूज्य बनाने वाला। उनको कहा जाता है परम पूज्य, परम पिता, परम आत्मा माना परमात्मा। श्री कृष्ण को ऐसे थोड़ी कहेंगे कि परम पूज्य परम आत्मा अर्थात परमात्मा, श्री कृष्ण को नहीं कहेंगे, श्री कृष्ण को थोड़ी ऐसे कहेंगे, उनको सब गॉड फादर नहीं कहेंगे, उनको देवता कहते हैं, लेकिन गॉड फादर वो तो नहीं कहेंगे ना, उनको गॉड फादर नहीं कहेंगे। निराकार गॉड को ही सब गॉड फादर कहते हैं। है वह भी आत्मा परंतु परम आत्मा है, इसलिए उनको परमात्मा कहते। वह है भी आत्मा परंतु परम है, इसलिए उनको परमात्मा कहा जाता है। वह परम आत्मा सदैव कहाँ रहते हैं? परम धाम में रहने वाले हैं। अंग्रेजी में उनको सुप्रीम सोल कहा जाता है। तुम बाप कहते हैं, तुम गाते भी हो, क्या गाते थे? आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। कितने अच्छे स्पष्ट किया, जब तुम बच्चे गाते रहे आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, तो इसलिए परमात्मा अलग है आत्मा अलग है। तुम गाते थे आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, ऐसे नहीं परमात्मा परमात्मा से अलग रहे बहुकाल नहीं। ये पहले नंबर का अज्ञान है। कहते ना परमात्मा सर्वव्यापी है, तो बाबा कहते ये पहले नंबर का अज्ञान है। आत्मस्व परमात्मा, परमात्मा स्व आत्मा कहना ये पहले नंबर का अज्ञान है। आत्मा तो जन्म मरण में आती है, परमात्मा तो नहीं आते ना। उनका गायन भी करते हैं कि जन्म मरण रहित है। आत्मा तो जन्म मरण में आत्मे, परमात्मा थोड़ी पुनर्जन्म में आते हैं। बाप बैठ समझाते हैं, तुम भारतवासी स्वर्गवासी पूज्य थे, ह्यूमैनिटी के पूज्य सब देवी देवताएं थे। बाबा कहते, कल भी बाबा ने कहा ना तुम पूर्वज हो है, तो बाबा ने कहा कि ह्यूमैनिटी के पूज्य कौन थे? देवी देवताएं थे। ये सारी ईश्वर की फैमिली है। कौन सी फैमिली है बोलो? ये कौन सी फैमिली है बोलो? हम गॉडली फैमिली के हैं, बच्चे हैं। बाबा तो कहते ईश्वर फैमिली, उसमें कौन है? हम बच्चे हैं ना। ये सारी ईश्वर की फैमिली है। ईश्वर है रचयिता। गाया जाता है तुम मात पिता हम बालक तेरे, तो फैमिली हो गई ना। भक्ति में गाते रहे लिख समझे नहीं ना, तो बाबा प्रैक्टिकल में बताते गाते हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे, तो फैमिली हो गई ना। अच्छा भला ये बताओ कि मात पिता किसको कहते हो? बाबा कहते फिर उनसे प्रश्न पूछो, गाते रहते हैं लेकिन मात पिता कौन है फिर भूल जाते ना। अच्छा भला ये तो बताओ तुम मात पिता किसको कहते हो? ये कौन कहते हैं, किसको कहते हो, कौन कहने वाला है? आत्मा कहती है तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से स्वर्ग के सुख घने। भक्ति में गाते रहे तुम मात पिता हम बालक तेरे, तेरी कृपा से सुख घने। बाबा कहते कौन से सुख घने हैं? आत्मा कहती है ना तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से स्वर्ग के सुख घनेरे, हमको स्वर्ग में मिले हुए थे। स्वर्ग के सुख घनेरे हमको स्वर्ग में मिले थे, फिर दोबारा मिलेंगे। तुम मात पिता आकर, बाबा बता रहे हैं बाबा को क्या कहते हैं, तुम मात पिता आकर स्वर्ग की स्थापना करते हो, तो हम आपके बच्चे बनते हैं। बच्चे क्या कहते बाबा? आप स्वर्ग की स्थापना करते हो और हम आकर के बच्चे बनते हैं। बाप कहते हैं मैं संगम पर ही आकर राजयोग सिखाता हूँ नई दुनिया के लिए। मनुष्यों की बुद्धि बिल्कुल ही भ्रष्ट बन गई, क्योंकि कुछ समझते नहीं है ना, संगम युग को समझते हैं ना परमात्मा को समझते हैं, पुकारते रहते हैं। तो इसलिए बाबा को कहना पड़ता है कि मनुष्यों की बुद्धि बिल्कुल ही भ्रष्ट बन गई है। स्वर्ग को नरक समझ लेते क्योंकि स्वर्ग में ये था रावण था, स्वर्ग में लड़ाई थी राक्षस से, तो बाबा कहते स्वर्ग को भी नरक समझ लेते। कहते हैं वहां भी कंस जरा संदेह हरना कश्यप आदि थे। कितनी बड़ी भूल कि स्वर्ग को भी नरक बना दिया है। कहते वहां भी कंस जरासंधि हिरण्यकश्यप आदि थे, बाप आकर के समझाते हुए क्या तुम भूल गए हो। बाबा कहते क्या भूल रहे हो। बाबा आकर समझाते हैं क्या तुम भूल गए हो, मेरी तो शिव जयंती भी तुम भारत में मनाते हो ना, गाया भी जाता है शिवरात्रि, शिव जयंती शिवरात्रि कहते। तो बाबा कहते कौन सी रात्रि, ये ब्रह्मा की बेहद की रात्रि है। बाप संगम पर आकर रात्रि से दिन अर्थात नरक से स्वर्ग बनाते हैं। शिवरात्रि का अर्थ भी कोई को पता नहीं, वो समझते रात्रि होती है 12 बजते पूजा करनी शुरू कर देते, वास्तव में कौन सी रात्रि वो भी नहीं जानते ना। तो बाबा कहते हैं शिवरात्रि के अर्थ का भी कोई को पता नहीं है। भगवान है निराकार, मनुष्यों के तो जन्म बाय जन्म शरीर के नाम पड़ते। बाबा कहते मेरा केवल एक ही नाम है, मनुष्यों के तो कितने नाम है, आज एक है फिर दूसरा जन्म लिया दूसरा नाम हो जाएगा। मनुष्यों के तो जन्म बाय जन्म शरीर के नाम बदलते हैं। परमात्मा कहते हैं मेरा कोई शरीर का नाम नहीं है, मेरा नाम ही है शिव, मैं सिर्फ बूढ़े वानप्रस्थ तन का आधार लेता हूँ। ये पूज्य था अब पुजारी बना है, शिव बाबा ही आकर स्वर्ग रचते हैं, हम उनके बच्चे हैं, हम बच्चे हैं स्वर्ग के मालिक बनते हैं, शिव बाबा ही आकर स्वर्ग रचते हैं, हम उनके बच्चे हैं तो जरूर हमें स्वर्ग का मालिक होना चाहिए। राजा का बच्चा राजकुमार आगे जाल के राजा बनेगा ना, तो शिव बाबा जो स्वर्ग की रचना करते हैं उनके बच्चे क्या होना चाहिए, जरूर स्वर्ग के मालिक होने चाहिए। शिव बाबा है ऊंचते ऊंच, ब्रह्मा विष्णु शंकर का अपना अपना पार्ट है, हर एक आत्मा में अपना सुख और दुख का पार्ट नूंदा हुआ है। तुम जानते हो, क्या जानते हो, हम शिव बाबा के वारिस बने थे अब फिर बन रहे हैं फिर बनेंगे। तुम जानते हो हम शिव बाबा के वारिस बने थे, शिव बाबा ने स्वर्गवासी बनाया था, तब तो उनको सब याद करते हैं। जो शिव बाबा ने दिया है कोई कुछ देता है तब तो याद करते ना, शिव बाबा ने स्वर्गवासी बनाया था तब तो उनको सब याद करते हैं। ओ गॉड फादर रहम करो, साधु भी साधना करते हैं क्यों, क्योंकि यहाँ अथा दुख है तो निर्वाण धाम जाना चाहते हैं, आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है। साधु क्या कहते हैं कि आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है, या फिर कहेंगे हम आत्मा सो परमात्मा। बाबा कहते ये समझना रॉन्ग है, आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है, हम आत्मा सो परमात्मा ये समझना रॉन्ग है। अब तुम कहते हो परमात्मा, तुम कहते हो हम आत्मा परम धाम में रहने वाले, कितनांत वो कहते आत्मा परमात्मा में लीन हो जाते, और हम क्या कहते, बाबा ने क्या बताया, हम आत्मा परम धाम में रहने वाली हैं, फिर देवता कुल में आएंगे, फिर 84 जन्म लेंगे, हम आत्मा वर्णों में आती। हम आत्मा क्या करती है, बाबा सारा ज्ञान सृष्टि चक्र का बता रहे हैं, हम आत्मा परम धाम में रहने वाली हैं, फिर देवता कुल में आएंगे, फिर 84 जन्म लेंगे, हम आत्मा वर्णों में आती है। शिव बाबा जन्म मरण में नहीं आते हैं, सिर्फ नारायण की डायनेस्टी थी, वहां पर सतयुग में श्री नारायण की डायनेस्टी होती है। फिर कैसे होती है, सिर्फ नारायण की डायनेस्टी थी, जैसे क्रिश्चियन घराने में एडवर्ड डी फोर्स सेकेंड थर्ड चलती है, तो वहां पर भी ऐसे चलेगा, लक्ष्मी नारायण फर्स्ट सेकेंड थर्ड ऐसे चलेगा। इंग्लिश नहीं बोलेंगे, एक दो, दो ऐसे करके बोलेंगे, पहला दूसरा तीसरा, लेकिन बाबा कहते वहां डायनेस्टी चलती है सतयुग के अंदर। जैसे क्रिश्चियन घराने में एडवर्ड द फर्स्ट सेकंड थर्ड चलती हैं, अभी तुम ब्राह्मणों का तीसरा नेत्र खुला है, बाप बेटा आत्माओं को समझाते हैं। इसमें बाबा ने एक राजयुक्त बताया है कि लक्ष्मी नारायण द फर्स्ट सेकंड द थर्ड ऐसे आठ डायनेस्टी चलती। बाबा कहते वहां तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, लेकिन सतयुग के अंदर लक्ष्मी नारायण के फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे आठ डायनेस्टी चलती है। अभी तुम ब्राह्मणों का तीसरा नेत्र खुला है, बाप बैठ आत्माओं से बात करते हैं, तुम ऐसे 84 जन्मों का चक्कर लगाए इतने इतने जन्म लेते आए। सतयुग में कितने थे, त्रेता में कितने थे, फिर द्वापर में कितने, कलयुग में कितने, तो बाबा वो बताते ऐसे चक्कर लगाते कैसे जन्म लिए हैं। वर्णों का एक चित्र भी बनाते हैं, बाबा ने बनवाया था। बाबा हमेशा कहते थे ये वर्णों का चित्र होना चाहिए, बहुत सुंदर होना चाहिए। शुरू में हर सेंटर पर ये वर्णों का चित्र होता था, अभी कहीं कहीं सेंटर पर होगा, लेकिन बहुत सुंदर एक ट्रांस लाइट के रूप में अपने आध्यात्मिक संग्रहालय में बनाया हुआ है उसका डिजाइन, और बहुत सुंदर बना हुआ है। तो बाबा कहते हैं वर्णों का एक चित्र बनाते हैं जिसमें देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र ब्राह्मण बनाते हैं। अब तुम जानते हो हम सो ब्राह्मण चोटी हैं, इस समय हम हैं कौन है याद करो। बाबा ने पहले क्या कहा, इस समय हम हैं ईश्वरीय औलाद, ईश्वरीय फैमिली के, इस समय हम हैं ईश्वरीय औलाद प्रैक्टिकल में, कहने में नहीं प्रैक्टिकल में, इस समय हम हैं ईश्वरीय औलाद प्रैक्टिकल में। इस सहज राज्यों और ज्ञान से हमको सुख घनेरे मिलते। गाते ना तुम मात पिता बालक तेरे, तो बाबा कहते घनेरे सुख कब मिलते हैं, ईश्वरीय ज्ञान और सहज राजयोग से। इस सहज राज्यों ज्ञान से हमको सुख घनेरे मिलते हैं। कोई तो सूर्यवंशी राजधानी का वर्षा लेते हैं, कोई तो चंद्रवंशी का, सारी किंगडम स्थापन हो रही है, हर एक अपने पुरुषार्थ से वह पद पाएंगे। कोई अगर पूछे अभी पढ़ते पढ़ते हमारा शरीर छूट जाए तो क्या पद मिलेगा, बाबा से पूछते थे कि अगर हम पढ़ते पढ़ते शरीर छोड़ देंगे, तो बाबा कभी कहते तुम अपनी पढ़ाई से समझ सकते हो। बाबा तो जानते थे, बाबा कभी कभी कह देते थे हाँ बाबा बता देंगे, लेकिन बाबा बताते नहीं थे, एक गुप्त इशारा देते थे, अच्छी पढ़ाई है, मर्यादाओं में संपन्न है, तो जरूर अच्छे घर में जन्म लेंगे। तो बाबा कहते हैं कोई अगर पूछे अभी पढ़ते पढ़ते हमारा शरीर छूट जाए तो क्या पद मिलेगा, तो बाबा बतला सकते हैं योग से आयु बढ़ती है, विकर्म विनाश होते हैं, और कोई उपाय ही नहीं है पतित से पावन बनने का। पतित पावन कहने से ही भगवान याद आता है, परंतु भगवान है कौन, बाबा कहते ये भी नहीं जानते, पुकारते रहते लेकिन भगवान है कौन ये भी नहीं जानते हैं। बाप कहते हैं मैं आता ही हूँ भारत में, मेरा बर्थ प्लेस कौन सा है, भारत है, और बर्थ प्लेस भारत है, और बाबा भारत में आते हैं, हम बच्चों को ही भरपूर करते हैं। बाप कहते हैं मैं आता ही भारत में हूँ, ये मेरा बर्थ प्लेस है, सोमनाथ का मंदिर कितना आलीशान है, जब शुरू में बनाया कितने हीरे जवाहरात थे, फिर लूट कर ले गए, कितनी बार लूटा, अब भी बनाया गया है, बहुत सुंदर बना है। तो बाबा कहते सोमनाथ का मंदिर कितना आलीशान है, ये बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, भक्ति मार्ग में फिर यादगार बनने शुरू होते हैं। जब पुजारी बनते हैं तो पहले पहले सोमनाथ का मंदिर बनाते हैं। भारत तो सतयुग त्रेता में बहुत साहूकार था, भारत जैसा साहूकार आज की दुनिया में कोई भी कॉन्टिनेंट या कोई भी देश नहीं है। भारत तो सतयुग त्रेता में बहुत साहूकार था, मंदिरों में भी अक्की चार धन था। अक्की चार मीन अथा, जिसकी कोई गिनती नहीं हो सकती। जब द्वापर में मंदिर बनाए तो भी कितने हीरे जवाहरात लगाए ना। मंदिरों में भी अक्की चार धन था, भारत हीरे तुल्य था। अब तो भारत कंगाल कोड़ी तुल्य। क्यों बाबा बता रहे हैं? उस भेंट में कितना धन संपत्ति थी, उसके कंपैरिजन में क्या हालत हो गई है। फिर बाप आकर के भारत को हीरे तुल्य बनाते हैं। कोई से भी पूछो कि क्रिएटर कौन है, कहेंगे परमात्मा। वह है कहाँ? कह तो देंगे परमात्मा, लेकिन वह है कहाँ? वो फिर क्या कहते हैं? वह तो सर्वव्यापी है। बाप कहते हैं ये सारा झाड़ जड़ जड़ी भूत अवस्था को पाया हुआ है। अपने आप को देखा जाता है कि हम लायक बने हैं। अब बाबा बच्चों को विशेष काम दे रहे, क्या? अपने आप को देखा जाता है हम लायक बने हैं। किस चीज के लायक? जो बाबा मम्मा के गद्दी नशीन बन सके। कितना बड़ा सब्जेक्ट है कि ऐसा लायक बनाओ जो बाबा मम्मा के गद्दी नशीन बनो, मीन्स लक्ष्मी नारायण के आगे की जनरेशन। बाबा कहते अपने को देखा जाता है हम लायक बने हैं जो बाबा मम्मा के गद्दी नशीन बन सके। ये है ही पति दुनिया, पवित्रता है मुख्य। अब तो नो हेल्थ नो वेल्थ नो हैप्पीनेस। हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस कुछ भी नहीं रहा, कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। ये है ऋण के पानी के मिसल। ऋण समझते हैं ना, रेगिस्तान होते हैं ना, जैसे मृग तृष्णा के लिए। मृग जो होता है वो क्या करता है, पर रेत दूर दूर से, तेज धूप में रेत दूर से चमकते है और ऐसे लगता है कि पानी का तालाब है। मृग को प्यास लगती है, दौड़ता जलता है, दौड़ता जाता है, वहां पहुंचता है तो वहां पर पानी नहीं होता, रेत होती है। तो बाबा कहते ये मृग तृष्णा के समान राज्य है। इस पर भी दुर्योधन की कहानी शास्त्रों में लिखी हुई। दुर्योधन की कहानी बताते ना, दुर्योधन विकारी को कहा जाता है। दुर्योधन कौन है? कोई वैसा नहीं है। बाबा कहते दुर्योधन विकारी को कहा जाता है। द्रौपदियां कहती हैं हमारी लाज रखो। सब द्रौपदियां है ना, ये बच्चियां स्वर्ग का द्वार है। कितनी बड़ी टाइटल। बाबा कहते ये बच्चियां वो पुकारती रहती है, और ये बच्चियां जिन्होंने बाबा को पहचाना वो स्वर्ग का द्वार खोलने वाली है। ये बच्चियां स्वर्ग का द्वार है। बाबा कितना अच्छी रीति समझाते हैं। जिनका बुद्धि योग पूरी रीति लगा हुआ होगा तो धारणा भी होगी। अब समझ लो, कई कहते ना हमारे को धारणा नहीं होती है, हमारा योग नहीं लगता। तो बाबा कहते जिनका बुद्धि योग पूरी रीति लगा होगा तो धारणा भी होगी। नॉलेज ब्रह्मचर्य में ही पड़ी जाती। तो क्या करना है? अपनी बुद्धि को पवित्र रखना है। नॉलेज ब्रह्मचर्य में पड़ी जाती है। बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहना है, दोनों तरफ निभाना है। कल परसों भी बाबा ने कहा, कई कहते हैं मैं यहाँ आके बैठ जाए, बाबा इन बच्चों को संभाले। बाबा कहते नहीं, तुम्हारी रचना तुमको संभालना है, दोनों तरफ निभाना है। लौकिक को भी संभालना है और अलौकिक जीवन भी बनाना है, दोनों तरफ निभाना है। मरना भी जरूर है। मरने समय मनुष्य को मंत्र देते, क्या कहते हैं? ईश्वर को याद करो, भगवान को याद करो। अब जिसने सारी लाइफ याद ही नहीं किया तो अंत में कैसे याद करेगा? तो बाबा बता रहे हैं मरने समय मनुष्य को मंत्र देते हैं। बाप कहते हैं तुम सब, अब बताओ तुम सब मरने वाले है? कोई ऐसी यूनिवर्सिटी जिसमें कोई कहे कि तुम सब मरने वाले है? बाबा की जो भाषा है इतनी अंदर सुंदर कि बाबा क्यों बता रहे हैं कि अपने जीवन को बनाना है। तुम सब मरने वाले हो, मैं कालों का काल सबको वापस ले जाने वाला हूँ। तो खुशी होनी चाहिए, मरने की भी खुशी कि हम जाकर के प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे, बाबा आए हमको लेने के लिए। फिर जो अच्छी रीति पढ़ेंगे वह स्वर्ग के मालिक बनेंगे, नहीं पढ़ेंगे तो प्रजा पद पाएंगे। पूरा हिसाब बता दिया, पढ़ेंगे अच्छी रीति पढ़ेंगे तो स्वर्ग के मालिक बनेंगे, नहीं पढ़ेंगे तो प्रजा पद पाएंगे। यहाँ तुम आए हो राज्य पद पाने, प्रजा पद पाने के थोड़ी। बाबा जब पूछते सब कहेंगे हम लक्ष्मी नारायण बनेंगे। बाबा कहते लक्ष्मी नारायण तो एक बनेगा लेकिन उसकी फैमिली में आएंगे। तो बाबा कहते हैं राज्य पद पाने आए हो, तुम यहाँ आए हो राज्य पद पाने। ये पढ़ाई है, इसमें अंधश्रद्धा की तो बात नहीं है। ये पढ़ाई है ही किसके लिए? राजाई के लिए। जैसे पढ़ाई की एम एंड ऑब्जेक्ट है, लौकिक पढ़ाई में भी एम ऑब्जेक्ट होता है ना, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई बैरिस्टर बनेगा, तो यहाँ भी इस पढ़ाई की एम एंड ऑब्जेक्ट क्या है? हम मनुष्य से देवता बनते हैं। जैसे पढ़ाई की एम एंड ऑब्जेक्ट है, बैरिस्टर बनेगा तो योग जरूर पढ़ाने वाले टीचर से रखना पड़े कि पढ़ाने वाला आज क्या पढ़ाएगा, वो याद करता रहेगा ना क्या, फिर पढ़ाई को भी याद करेगा। बैरिस्टर बनेगा तो योग जरूर पढ़ाने वाले टीचर से रखना पड़े। यहाँ तुमको भगवान पढ़ाते हैं तो उनसे योग लगाना है। बाप कहती है मैं परम धाम बहुत दूर से आया हूँ। बाबा कभी कभी पूछते हैं तुम बच्चे दूर से आते या बाबा दूर से आते। बाबा कभी अव्यक्त बाबा भी पूछते थे कहाँ उधर से जम्मू कश्मीर, कहाँ उधर आसाम, कहाँ कहाँ दूर दूर से आते हैं। बाबा कहते सबसे दूर से मैं आता हूँ लेकिन मुझे एक सेकंड लगता है और बच्चों को आने में टाइम लगता है। तो बाबा कहती हैं मैं परम धाम बहुत दूर से आता हूँ। परम धाम कितना ऊंचा है, कितना ऊंचा है कर उसकी काउंटिंग भी नहीं कर सकते ना। परम धाम कितना ऊंचा है, सूक्ष्म वतन से भी ऊंच, वहां आने से वहां आने में मुझे एक सेकेंड लग। बाबा कहते हैं परम धाम कितना ऊंचा है, सूक्ष्म वतन से भी ऊंच, वहां आने से मुझे एक सेकेंड लगता है। उनको तीखा, उन जैसा तीखा और कोई हो नहीं सकता। कितने बड़े बड़े रॉकेट बना लो फिर भी टाइम लगता है लेकिन बाबा को आने में एक सेकंड लगता है। तो बाबा कहते बाबा जैसा तीखा, या बाबा कभी कभी कहते आत्मा जैसा तीखा और बाबा जैसा तीखा रॉकेट दुनिया में कोई है ही नहीं। तो बाबा कहते उनसे तीखा और कुछ हो नहीं सकता। सेकंड में जीवन मुक्ति देता हूँ। जनक का मिसाल है ना, अभी तो नरक पुरानी पतित दुनिया है, नई दुनिया स्वर्ग को कहा जाता है। बाप नरक का विनाश कराए, स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। बाकी सब आत्माएं शांति धाम में चली जाती हैं। आत्मा इमॉर्टल है, अनादि अविनाशी है, उनको पार्ट भी इमॉर्टल मिलाओ। आत्मा भी अनादि अविनाशी और आत्मा का पार्ट भी अविनाशी अनादि है, उनको पार्ट भी इमॉर्टल मिला हुआ है। फिर आत्मा छोटी बड़ी कैसे हो सकती है? छोटी बड़ी मनुष्य आत्मा अपने कर्म से होते हैं, बाकी आत्मा तो छोटी है, पार्ट भी अनादि है, फिर आत्मा छोटी बड़ी कैसे हो सकती है? अथवा जल मर कैसे सकती है? वो जल में भी नहीं मर सकती। आत्मा को न पानी गिला सकते न हवा उड़ा सकते, आत्मा तो अनादि है ना। तो बाबा बता रहे हैं है ही स्टार, बड़ा छोटा हो न सके। आकाश के स्टार तो दूर दूर से छोटे बड़े दिखाई देते, बाबा के आत्मा स्टार है वो बड़ा छोटा हो नहीं सकते। है ही स्टार, बड़ा छोटा हो न सके। अब तुम हो गॉड फादरली स्टूडेंट। गॉड फादर नॉलेजफुल और ब्लिसफुल है, दो बातें बताई। गॉड फादरली फैमिली के मेंबर्स हैं, हमारी गॉड फादरली फैमिली है, फिर गॉड फादरली स्टूडेंट है और गॉड फादर नॉलेजफुल ब्लिसफुल है। वे तुमको पढ़ा रहे हैं, तुम जानते हो इस पढ़ाई से हम देवी देवता बनेंगे। तुम भारत की सेवा कर रहे हो, पहले पहले तो बाप का बनना है और जगह तो गुरु के पास जाते हैं। बाबा कहते वहां जाएंगे, मंदिरों में जाएंगे और जगह जाएंगे, गुरु के पास जाएंगे, सन्यासी के पास जाएंगे। यहाँ तुम कहाँ आते हो? बाबा के पास आते हो। हमेशा ये लक्ष्य रहता है कि हम अपने पिता के पास जा रहे हैं, अपने बाबा के पास जा रहे हैं। वो लोग कहेंगे हम गुरु के पास जा रहे हैं। तो बाबा कहते हैं पहले पहले तो बाप का बनना है, और जगह तो गुरु के पास जानते हैं, उनका बनते हैं अथवा उनको अपना गुरु बनाते। यहाँ बाबा के पास आते, बाबा को अपना बाप नहीं बनाते। बाबा तो हमारा बाप है ही ना, वो लोग जाके गुरु बनाते हैं। लेकिन बाबा कहते तुम सब मेरे अनादि अविनाशी बच्चे हो, वह उनको अपना गुरु बनाते। यहाँ तो है ही बाप, तो पहले पहले बाप का बच्चा बनना पड़े। बाबा हमारा बाबा है, हम बाबा के बच्चे हैं, तो पहले पहले बाप का बच्चा बनना पड़े। बाप बच्चों को अपनी जायदाद देते हैं। बाप कहते हैं बच्चे तुम एक्सचेंज करो। क्या एक्सचेंज करो? पुराना दे दो, खटा पुराना दे दो, कचरा दे दो, लेकिन उसके रिटर्न में क्या मिलेगा? स्वर्ग की बादशाह। तो बाबा कहते बाप बच्चों को अपनी जायदाद देते हैं। बाप कहते हैं बच्चे तुम एक्सचेंज करो, तुम्हारा कखपन हमारा और हमारा सब कुछ तुम्हारा, तुम्हारा कखपन हमारा। लेकिन बच्चे कितने अच्छे, कखपन में भी इतना मोह है, इतना मोह है। बाबा को कहेंगे बाबा ये आपका, फिर थोड़ा सा कहेंगे नहीं ये मेरा है। और कई ऐसे समझदार हैं देने के बाद देखेंगे मैंने इतना दिया मैंने, वो गिनती करते रहते और गिनती करते करते माइनस जीरो में चला जाता, जीरो भी नहीं। उसको जितनी माइनस करते जाओ, जितनी गिनती उतने माइनस होते हैं। फिर गिनती करते हैं मैंने इतना दिया, अब जिसको करना करते रहो, ना यहाँ मिलेगा सुख ना स्वर्ग में सुख मिलेगा। इसलिए बाबा को दिया क्या, हम तो कुछ देते ही नहीं है, कखपन भी नहीं है जो बाबा को दे सके, वो भी कचर पट्टी है। बाबा कहते खुशी से दो तो स्वर्ग की बादशाह तो आपकी है। तो कभी नहीं सोचना है कि मैंने ये दिया। कई तो नोट करते हैं मैंने इतना दिया, फिर आएंगे मैंने इतना दिया, अरे कब दिया था मैंने दिया, खाया कितना वो पता नहीं, और सेवा में कितना लगा वो पता नहीं, मैंने इतना दिया, वो अभी तक पड़ा है जो दिया है। इसलिए कभी भी ये संकल्प नहीं करना है, कखपन दिया स्वर्ग की बादशाही लो। भक्ति में भी कल परसों बाबा बता रहे थे ना, कहते थे एक हाथ से दो तो दूसरे हाथ को मालूम ना पड़े। तो इसलिए बाबा हम बच्चों को इस पर भी ध्यान खिंचवाते हैं। बाबा कहते हैं तुम्हारा कखपन हमारा, कहो तो सही कखपन बाबा ये तुम्हारा, लेकिन कह देते हैं देते नहीं है। बाबा कहते तुम्हारा कखपन हमारा, हमारा सब कुछ तुम्हारा, तुम जितना चाहिए लो, लेते ही नहीं है। तो बाबा कहते हमारा सब कुछ तुम्हारा, देह सहित जो कुछ है वह सब मेरे को दे दो, मैं तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों को पवित्र बना दूंगा, फिर राजाई पद भी दूंगा, आत्मा भी पवित्र शरीर भी पवित्र और राजाई पद भी दूंगा। तुम्हारे पर जो कुछ है तुम बलि चढ़ा दो, जीवन मुक्ति मिलेगी। बाबा ये सब आपका है, कहने में तो कह देते बाबा ये सब आपका है, मेरा आपका है, लेकिन मेरे को हाथ नहीं लगाना, ऐसे भी कहते हैं कहेंगे। और फिर कई समझदार बहुत अच्छे अच्छे, बाबा मेरे पास बहुत धन है, बहुत धन है, जब आपको जरूरत हो ना हमें कहना। बाबा की इतना जरूरत है ना, बाबा कहेगा और ऐसे ही सड़ जाएगा। जिसके लिए कहते ना भक्ति मार्ग में, किनकी दबी रही धूल में, किनकी राजा खाए, किनका चोर लूट जाए, किसकी गवर्नमेंट लूट जाए, और फिर क्या होगा। तो बाबा इसलिए कहते हैं कि बाबा ये सब कुछ आपका है। बाबा कहते तुम मुझे वारिस बनाओ, मैं तुम्हें 21 जन्म वारिस बनाता हूँ, सिर्फ तुम मेरी मत पर चलो। अब समझा, बाबा को वारिस बनाना मीन्स कुछ देना नहीं है, बाबा की श्रीमत पर चलना, सिर्फ तुम मेरी मत पर चलो, भल धंधा आदि करो, विलायत जाओ, कुछ भी करो, घूमो फिरो। बाबा हमेशा कहते ऐसा नहीं, बाबा मना करते, घूमो फिरो खाओ पियो, लेकिन बाबा को याद करो, बाबा की श्रीमत पर चलो, भल धंधा आदि करो, विलायत जाओ, कुछ भी करो, सिर्फ मेरी मत पर चलो, खबरदार रहना माया घड़ी घड़ी पछाड़ेगी। जब फ्री हो जाते ना, इधर उधर बुद्धि जाती है तो माया भी मौका ढूंढ लेती है। तो फिर बाबा खबरदार करते हैं, खबरदार रहना माया घड़ी घड़ी पछाड़ेगी, कोई भी विक्रम नहीं करना, श्रीमत पर चलेंगे तो श्रेष्ठ बनेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लादे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। और आज मम्मा की भी मातेश्वरी जी के भी महावाक्य वो भी सुनेंगे। धारणा के लिए मुख्य सार पहला है, आत्मा और शरीर दोनों को पावन बनाने के लिए देह सहित जो कुछ है उसे बाप के हवाले कर उनकी श्री मत पर चलना है। आत्मा और शरीर दोनों को पावन बनाने के लिए देह सहित जो कुछ है उसे बाप के हवाले कर उनकी श्री मत पर चलना है। दूसरा, माता पिता के गद्दी नशीन बनने के लिए स्वयं को लायक बनाना है। लायक बनने के लिए मुख्य पवित्रता की धारणा करनी है। अभी सुनेंगे आज का वरदान। आज का वरदान, संगम युग पर अति ने सुख का अनुभव करने वाले डबल प्राप्ति के अधिकारी भव। संगम युग पर अति ने सुख का अनुभव करने वाले डबल प्राप्ति के अधिकारी भव। जो बच्चे संगम युग पर अति इंद्रिय सुख का अनुभव कर लेते हैं उन्हें सदा शांति और खुशी की डबल प्राप्ति का नशा रहता है, क्योंकि अति इंद्रिय सुख में वह दोनों प्राप्तियां समाई हुई हैं। अभी आप बच्चों को जो बाप और वर्षी की प्राप्ति है वह सारी कल्प में नहीं हो सकती। इस समय की प्राप्ति अतीन्द्रिय सुख और नॉलेज भी फिर कभी नहीं मिल सकती। इस समय की प्राप्ति अतीन्द्रिय सुख और नॉलेज कभी नहीं मिल सकती। तो इस डबल प्राप्ति के अधिकारी बनो। स्लोगन, एक दो के संस्कारों को जानते हुए उनसे मिलकर चलना यही उन्नति का साधन है। एक दो के संस्कारों को जानते हुए उनसे मिलकर चलना यही उन्नति का साधन है। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य टाइटल है, सच्चे पातशाह परमात्मा से सच्चा होकर रहो। पंजाबी में गुरमुखी में परमात्मा को पातशाह भी कहते हैं, बादशाह पातशाह। तो बाबा मम्मा कह रही, सच्चे पातशाह परमात्मा से सच्चा होकर रहो। इस समय अपने को बाप परमात्मा द्वारा ये फरमान मिला है, निरंतर मेरी याद में रहो। योग का अर्थ है, अब मम्मा कितना प्यारी बात बता रही है, योग का अर्थ है ईश्वरीय याद में रहना। योग का अर्थ है ईश्वरीय याद में रहना। योग का अर्थ कोई ध्यान नहीं है, ध्यान में बैठ जाओ ये करो। योग का अर्थ है ईश्वरीय याद में रहना। योग का अर्थ कोई ध्यान नहीं है, अपना ये सहज राजयोग जो चलते फिरते कामकाज करते उनकी याद में रहना। मम्मा बता रही है अपना सहज राजयोग क्या, चलते फिरते काम काज करते बाबा की याद में रहना, जिसको ही अटूट अखंड योग कहा जाता है। परंतु इसमें निरंतर रहने की प्रैक्टिस की दरकार है। मम्मा एक्सप्लेन भी करती है, फिर युक्ति भी बताती है, क्या बताया, परंतु इसमें निरंतर रहने की प्रैक्टिस की दरकार है। अगर उनके फरमान पर फरमानबरदार नहीं हो रहेंगे तो कोई कोताही करेंगे, कुछ भी कोताही करेंगे। तो मम्मा बता रही कि बाबा के फरमान पर फरमानबरदार नहीं रहेंगे, कुछ कोताही करेंगे, कोताही मीन्स अवज्ञा करेंगे, तो दंड जरूर भोगना पड़ेगा। उनका फरमान है, जैसा कर्म मैं करता हूँ मुझे देख तुम भी फुट स्टेप लो, जिसको कहते हैं कदमों पे कदम। बाबा जैसा कर्म करते उनका फरमान क्या है, जैसा कर्म मैं करता हूँ मुझे देख करके फुट स्टेप लो, कदमों पे उन कदमों पे चलो, नहीं तो माया की चोट खाएंगे। सच्चे पातशाह से सच्चा होकर है, कहते ना है भी सच होगा भी सच, तो मम्मा बता रही सच्चे पातशाह से सच्चा होकर रहना, जो कुछ भी माया के विघ्न सताए तो वह भी उनके आगे रखना चाहिए। कोई भी माया का विघ्न आया कैसा भी आया है, मम्मा किसी बाबा के सामने रखो, जो कुछ भी माया के विघ्न सतावे वो भी इनके आगे रखना चाहिए, तो उनकी मदद से माया हट जाएगी, रास्ता क्लियर हो जाएगा। फिर तो जहाँ बिठाए जैसा चलाए जो खिलाए रास्ता क्लियर हो जाए, कितनी अच्छी बात। बाबा जो भी कराए जैसे बिठाए जो खिलाए, इतना अच्छा होता है बाबा की छत्र छाया में, तो हर चीज इतनी अच्छी होती है। तो मम्मा बता रहे हैं तो रास्ता क्लियर हो जाएगा, फिर तो जहाँ बिठाए जैसे चलाए जो खिलाए रास्ता क्लियर हो जाएगा। ऐसा साथ देने की बहुत हिम्मत चाहिए, पहले खुद सच्चे बनो तब तो बाबा की मदद मिलेगी ना। ऐसे महान सौभाग्यशाली बिल्कुल थोड़े ही निकलेंगे। अब मम्मा दो बातें बता रही, महान सौभाग्यशाली कौन है जो बाबा से बिल्कुल सच्चे हैं और हर बात बाबा को बताते हैं। तो मम्मा कहती हैं ऐसे महान सौभाग्यशाली बिल्कुल थोड़े ही निकलेंगे, वह विजय माला में जाएंगे, बाकी भाग्यशाली है। आप बताओ भाग्यशाली कौन है, तो थोड़ा बहुत पद लेके प्रजा में चले जाएंगे। मम्मा इस बात को स्पष्ट कर रही है, बाकी भाग्यशाली है जो थोड़ा बहुत लेकर जाकर प्रजा बनेंगे। तो थोड़ा मिलने में खुश नहीं हो जाना चाहिए, थोड़ा सा मिला चलो ठीक है। तो मम्मा कहती है तो थोड़ा मिलने में खुश नहीं हो जाना, अपनी इच्छा तो क्या है संपूर्ण हो, साहस रखो आगे बढ़ना है। माया विघ्न डालेगी परंतु उनके ऊपर विजय पानी है, इसमें अगर भूल की तो निश्चय की कमी है। अब माया आई भूल हो गई तो मामा बताती क्या कारण है, निश्चय की कमी है, कुछ अपनी धारणा में कमी है, ये तो अपना कसूर है। कई बच्चे होशियार है ना, कहते माया ने तंग किया माया का कसूर है। मम्मा कहती नहीं, एक तो निश्चय में कमी है, कोई धारणा में कमी है, ये तो अपना कसूर है। इसमें लोकलाज कुल मर्यादा को तोड़ना पड़ता है, जब ये तोड़ेंगे तब ही सच्चे पारलौकिक दैवी मर्यादा को पाएंगे। ये विकारी दुनिया तो जानी है, देखो मीरा ने भी तो लोकलाज खोई तब तो गिरधर को पाया। अगर उस लोकलाज को रखेंगे तो दैवी लोक के भांति बन नहीं सकेंगे। अब कल्याण अर्थ ईश्वरी राय दी जाती है, अब कल्याण अर्थ ईश्वरी राय दी जाती है, अब ये अपनी बुद्धि का फैसला करना। मम्मा बता रही है कि ईश्वरी राय तो दे दी, अब क्या करना, अपनी बुद्धि से फैसला करना, अब ये अपनी बुद्धि का फैसला करना है, क्या करना है क्या उचित है ये तो खुद को फैसला करना है। अच्छा ओम शांति, अभी सुनेंगे अव्यक्त इशारे। सदा हर्षित रहने के लिए अपनी नेचर को सरल बनाओ और सहनशील बनो। जो सरल चित हैं वही सदा हर्षित रहते हैं, हर्षित चित हैं तो सबको आकर्षित करते हैं। हर्षित का अर्थ ही है अति इंद्रिय सुख में झूमना, ज्ञान का सिमरण करते अव्यक्त स्थिति का अनुभव करते अति इंद्रिय सुख में झूमना, इसको कहा जाता है हर्षित। इसके लिए साक्षीपन की सीट पर सेट रहे माया और प्रकृति के पपेट शो को मनोरंजन के रूप से देखो। अच्छा ओम शांति। अच्छा जो भी भाई बहने शांतिवन से हाथ खड़ा करो। अच्छा फिर सभी भाई बहनों को बता रहे हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं पांडव भवन के अंदर नीचे डाइनिंग हॉल में जगह नहीं है। जो भी भाई बहने आते हैं सबका सुबह का नाश्ता, दोपहर का भोजन, रात का भोजन नीचे के डाइनिंग हॉल में नहीं होता, ऊपर के बड़े डाइनिंग हॉल में होता। फिर से बता रही हूँ, सभी भाई बहने शांतिवन से आए हुए पार्टी के जो भी हैं, सबका सुबह का नाश्ता, दोपहर का भोजन, रात का भोजन ऊपर के बड़े डाइनिंग हॉल में होता है। नीचे कुछ कारोबार के कारण वहाँ पर जगह नहीं है, इसलिए कृपया कोई भी नीचे नहीं रुके, भोजन नाश्ते के लिए ऊपर के बड़े डाइनिंग हॉल में जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। अभी हम सभी बाबा की याद में बैठेंगे।